नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। शासन ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपए की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वर्ष 2026 में सरकार सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की दिशा में और अधिक सशक्त कदम बढ़ाएगी। शीतकालीन यात्रा में अब तक 17,000 से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे और पौड़ी गढ़वाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकीसेण में एक्सरे मशीन की सुविधा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ 54 लाख रुपए की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति दी है। इस धनराशि से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उपायों और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में संचार सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषण के अंतर्गत सिंचाई विभाग की 16 योजनाओं के लिए 53 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति दिए हैं। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में नगला किच्छा मोटर मार्ग के एक हिस्से को 2 लेन से 4 लेन में विकसित करने के लिए 80 करोड़ 63 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए वन प्रभागों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने और संबंधित कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर जनपदों में पुलिस संचार नेटवर्क को उच्चीकृत करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 15 करोड़ 23 लाख रुपए की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2026 में राज्य सरकार सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की दिशा में और अधिक सशक्त कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रीगणों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन प्रशासन और जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थान दिलाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये वर्ष एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
नववर्ष के अवसर पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार में परिवहन विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान प्रमुख मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थलों पर सघन वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान कुल 500 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें 150 चालान ओवर स्पीडिंग के मामलों में शामिल हैं। गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 50 वाहनों को सीज किया गया, जबकि नशे में वाहन चलाने के लिए 26 मामलों में चालान की कार्रवाई की गई। इसके अलावा बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वैध दस्तावेजों के अभाव और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक भी किया गया। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह के विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को समिति की संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को स्वीकृत प्रस्तावों के तहत जारी किए जाने वाले फंड और कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखने को कहा। साथ ही विभागों से निर्धारित प्रारूप में भौगोलिक प्रगति रिपोर्ट लेने के भी निर्देश दिए। बैठक में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए मानक तय करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यस्थल की स्थिति और प्रकृति के अनुसार कार्य किए जाएं और जहां संभव हो वहां वनस्पति संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही देहरादून में विभिन्न नहर प्रणालियों के सुधार और मजबूतीकरण के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए गए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
पौड़ी गढ़वाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकीसैंण में एक्सरे मशीन की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की जांच के लिए दूरदराज के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका समय और खर्च दोनों बचेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि एक्सरे मशीन के संचालन से गंभीर जांच के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि चाकीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन की स्थापना राज्य सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार योजनाओं का हिस्सा है। एक्सरे सुविधा शुरू होने पर क्षेत्रीय लोगों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार के प्रति आभार जताया। राज्य में शीतकालीन यात्रा के प्रति तीर्थ यात्रियों में श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों धामों में शीतकालीन गद्दी स्थलों पर अब तक 17,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 में शीतकालीन यात्रा ये राज्य की एक मजबूत आध्यात्मिक पहचान बनेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 की शीतकालीन यात्रा के लिए मंदिर समिति की ओर से यात्रा संबंधी कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने देश विदेश के श्रद्धालुओं को शीतकालीन यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के दो प्रारूप जारी किए। ये आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रगीत के प्रस्तावित 25 प्रारूपों में से पहले दो हैं। वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के अंतर्गत ये प्रारूप डिजिटली जारी किए गए। श्री द्विवेदी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का केवल गीत भर नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सशक्त और शाश्वत उद्घोष है।
वंदे मातरम की रचना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर ये केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई का सशक्त प्रतीक बन गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक गीत के रूप में नहीं, बल्कि एक नारे और अभिवादन के रूप में भी अपनाया। इसकी रचना के 150 वर्ष पूर्ण होना हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम इसे सुनकर और भावार्थ समझकर स्वयं को राष्ट्र के प्रति पुनः समर्पित कर सकते हैं।
लिसनिंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग।
राष्ट्रगीत के इन दोनों प्रारूपों के संयोजक उस्ताद जौहर अली ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
वंदे मातरम एक ऐसा देशभक्ति का गीत है जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम मिलते हैं हम एक दूसरे को वंदे मातरम कहें। संगीत के प्रति क्योंकि हमने जो ये वर्जन दिया है वो दो स्टाइल, एक तो कर्नाटक शैली का फ्लेवर है और एक हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो इंस्ट्रूमेंटल वर्जन है। और भी वर्जन हम बजाने जा रहे हैं, वोकल वर्जन और इस तरह से।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शासन ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपए की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वर्ष 2026 में सरकार सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की दिशा में और अधिक सशक्त कदम बढ़ाएगी। शीतकालीन यात्रा में अब तक 17,000 से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे और पौड़ी गढ़वाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकीसैंण में एक्सरे मशीन की सुविधा शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।